बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाइयों, सच है कि शहादत हमारे मुकद्दस दिफा का राज है। सच है कि हम सब शहादत के जज्बे से सरशार होकर अपनी जान माल से गुजर गए हैं, अपनी माँ बाप और बीवी बच्चों को छोड़ कर आए हैं। सच है कि हम सब अपने वतन और दीन के आशिक हैं। दुरुस्त है कि हमारा मुक्तदा हुसैन और हमारा मुर्शिद पीरे जमारान है। सच है कि ये आशिकों की वादागाह है। ये सब सच है, ये सब सच है, और हमें उसकी सच्चाई और दुरुस्तगी पर यकीन है, और इसी यकीन और ईमान ने हमारे शौक के जज्बे को भड़काया है। लेकिन हमारे इश्तियाक का मतलब ये नहीं है कि हम मरने के लिए लड़ते हैं। मेरे भाइयों, हम जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं, लड़ते हैं ताकि आज़ाद रहें और इज्जत की ज़िंदगी गुजारें, और हमारा दीन, हमारा इनकलाब और हमारी सरजमीन सद्दामियों और यजीदियों के बूटों तले न रौंदी जाए। हम लड़ते हैं और मरते हैं ताकि हमारे बच्चे आज़ादी के मज़े से सरशार हों। हम जावेदानगी के लिए लड़ते हैं, न कि मरने के लिए। हम बका की जंग लड़ रहे हैं, न फना की। हम जंगजू हैं लेकिन जंग पसंद नहीं है। हम नहीं कहते कि हमारी जंग मुकद्दस है, हम कहते हैं हमारा दिफा मुकद्दस है। हमारे किरदार का नमूना अब अब्दुल्लाह हुसैन हैं, जिन्होंने करबला के मारके को किश्वर गुशाई के लिए नहीं बल्कि अपने अकदार के दिफा के लिए बर्पा किया। मेरे भाइयों, ये बहुत अहम है कि हम जान लें कि हमारा बुनियादी मकसद दिफा है। दिफा शहादत वो मीठा शरबत है कि अगर इस रास्ते में हमें नसीब हुआ तो यही हमारा मकसद और नस्बुलैन है, और हम जावेदा हो जाएंगे। मिलकर एक सलवात पढ़ें। अल्लाह साहब, आप
जी शुक्रिया। आपकी खिदमत में अर्ज है कि फ्रंट लाइन पर इस वक्त हालात बेहद खतरनाक हैं। हमारे अफराद सख्त दबाव में हैं,
इसलिए हर बेस का फर्ज बनता है कि वो फ्रंट लाइन की हिमायत करें।
इस वक्त हम इमरजेंसी की हालत में हैं और मजबूर हैं कि तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता दोनों सिपाही भेजते हैं। तुम में से जो तजर्बेकार हैं वो नए आने वालों को जंगी फनून सिखाएं, उनकी रहनुमाई करें। इस मकसद के तहत मैंने एक फहरिस्त बनाई है जिसमें सब अफराद को दो गिरोह में तकसीम किया है। जो ज्यादा तजर्बेकार हैं वो फ्रंट लाइन पे जाएंगे और बाकी अकब में जरूरी फराइज को सर अंजाम देंगे। इंशाल्लाह जब 13-11 महाज पर पहुंच जाएंगे तो जरूरी बातें बता दी जाएंगे। हम सबको यहां से जाना होगा सिवाय 10 अफराद के जो यहां पर रहकर यहां के कामों को संभालेंगे। 2 अफराद असद और अमाद हैं और बाकी 8 रजाकार जो यहां रुकना चाहें अपने हाथ ऊपर करें।
8 अफराद पूरे नहीं होंगे फल्ला साहब, 10 ही चाहिए जो आपने कहा।
ये बहस का वक्त नहीं है। अकबर, कोरोश, सुलेमानी, ये 3 और।
फला साहब, किसने कहा है कि हमारा खून दूसरों से ज्यादा सुर्ख है? दूसरी बात, ये माकूल ये होगा कि वो 10 अफराद इन बंदों में से मुंतखब हो जो बिल्कुल जीरो मीटर हैं, ना कि हम जैसे जिनको बंदूक चलाने का तजुर्बा है।
सच कह रहा है फला साहब, इन्हीं 9 में से इंतखाब कर लें।
अब ये ना कहना कि हमारे ब्रेक फेल हो गए हैं, क्योंकि अब तो ना हम बस के बक्से में छिप रहे हैं ना रात की तारीकी में भागना चाहते हैं। मेरे भाई, अब तो हम सही रास्ते से दाखिल हो रहे हैं।
मेरे बच्चे असद, मेरा लगते जिगर असद, मेरा जिगर का टुकड़ा असद,
मेरा राज अगर खुला तो तुम्हारा भी खोल दूंगा।
असद, मेरे बच्चे, तुमने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? अपने बूढ़े बाप का तुम्हें ख्याल नहीं आया? कोई बात नहीं, मेरी पूरी जिंदगी तुम पर फिदा बेटे, बेटे तुम पर मेरी जान कुर्बान बेटे, मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी कितनी याद आती थी बेटे, मेरा गैरतमंद बेटा, मेरा इज्जतदार बेटा। अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ बेटा, गले लग जा बेटा, मैं तो तुम्हारे पैर चूमूंगा बेटा। मेरा बेटा मिल गया, आज मुद्दत बाद बेटा मिला।
खुदा के काम देख रहे हैं फल्ला साहब, ये जनाब असद के वालिद निकले। या अल्लाह, ये वही है जो असद को अपना बेटा बता रहे थे और मुझसे उसका पता पूछ रहे थे।
अल्लाह भाई, देर हो रही है, लोगों को चलने के लिए तैयार करें। चलिए
इमाद, असद और इसके वालिद को मेरे मोर्चे पर ले जाओ, मैं आता हूँ।
जी अच्छा फल्ला साहब, आइए आइए, इस तरफ आइए आइए। असद आओ, आ जाओ।
तैयार? जी जनाब। सिपाहियों माशाल्लाह, उठ जाओ। हुसैन चलो इनको लेके चलो।
तुम सब खुदा की अमान में रहो।
कमाल जाओ, जीप को ले जाओ, मशीन गन को भी ले जाओ, जाओ जाओ।
वो खुद कब आएगा?
कौन?
जावेद
नहीं आएगा, चकमा दे आया हूं उसे।
खुफिया पुलिस फला के सामने एक्टिंग करेगा क्या?
सच कह रहे हो? तो फिर ये कौन है?
मनुचेर है ना।
मनुचेर? मनुचेर ये है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मार डाला तुमने मुझे। अगर ये बंदा जाबिर का आदमी नहीं है तो हमें 13-11 पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सिगरेट का पैकेट है? सच कह रहा हूं मैं, हमें तंबाकू को खाना होगा, उसके खाने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ये लोग हमें वापस तेहरान भेज देंगे, वरना 11-13 की फ्रंट लाइन पर भेज देंगे। क्या ये सच है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है या ये असद का वहम है?
असद ने जो कहा है सही कहा है।
तो फिर खजाने का क्या करोगे? एक पांव तो कब्र में लटका हुआ है। अगर तुम में अक्ल होती तो अपनी दौलत को छोड़कर यहां मैदान जंग में खजाना ढूंढने नहीं आते।
वापस जाने के लिए कोई महफूज रास्ता तलाश करो।
अगर वापस ना जाना चाहूं
तो बहुत बुरा होगा।
किस लिए बुरा होगा? सिर्फ उन लोगों को इतना पता चल जाए कि तुम दोनों जेल से भागे हुए हो, रात होने से पहले ही तुम्हें जेल भेज देंगे। कम से कम 15 साल जेल काटोगे।
आखिर में यही होगा।
क्या मतलब कि आखिर में यही होगा? आखिर तक किसी को नहीं जाना है। फल्लाह के आने के बाद किसी तरह से 11-13 पे जाने से अपनी जान छुड़ा लेंगे, फिर मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालेंगे ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे।
इतनी दूर इसलिए नहीं आया हूं कि तुम लोग मुझे उल्लू बनाओ। फल्लाह के आने से पहले पहले तुमने मेरे दिल की बात मान ली तो ठीक है, वरना तुम्हारा हिसाब मुनकर नकीर ही करेंगे।
मेरे भाई, फल्लाह के आने पे इतनी ताकीद मत करो, हर काम अपने वक्त पर होता है।
इसका वक्त अभी है।
देखो मनुचर साहब,
इनके साथ इतनी बहस की जरूरत नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ठीक है, तो अब से समझो कि तुम लोग जेल में हो।
खूब कान खोलकर सुन लो मनुचर, उस जेल में मेरा जनाजा भी नहीं जाएगा। तुम्हारा और असद का झगड़ा तुम्हारा जाति मामला है, उसकी तपिश मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे?
ये सब अपने दोस्त से कहो।
मैं तुमसे कह रहा हूँ और सिर्फ एक बार कहूंगा।
छोड़ो अहमद, तुम वही काम कर रहे हो जो ये चाह रहे हैं।
अदद जो बताया क्या था? 11-13। मैं और असद 11-13 जा रहे हैं, तुम आओगे या रुकोगे? उस नक्शे के मुताबिक सलमताबाद का इलाका 11-13 में वाके है।
अपनी जिद पर अड़े रहकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? जो भी हमें मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे ना।
तुम तो मुझे असद और मुझसे भी ज्यादा बड़े खिलाड़ी लगते हो। तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो।
एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा असद का, एक तुम्हारा।
बोलो।
सच कह रहा है सर। असद,
सच कह रहा है अहमद, हमें 11-13 चलना होगा, लेकिन मनुचार के बगैर।
लेकिन 11-13 तो मैदान जंग है मेरे भाई।
जहां भी हो मुझे तो जाना ही होगा, क्योंकि ये मेरी किस्मत में लिखा है।
इसने फिर रूहानी बातें शुरू कर दी।
मेरे भाई ये मेरा आखिरी चांस है, शायद फिर कभी ऐसा मौका हाथ ना आए। तुम्हारे ख्याल से इस मनुचेहरे को रास्ते से कैसे हटाया जा सकता है?
इसको साथ ले जाना होगा।
सच कह रहा है।
फिर भी सोचो।
नहीं ले जाएंगे तो काम बिगाड़ देगा। इसको हटाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, बल्कि सही मौका आने पर।
सच कह रहा है।
यानी कोई और रास्ता नहीं है?
अगर मेरी समझ में आता तो तुम्हें बताता। ये खजाना जिसकी तलाश में तुम हो, वो कितने का होगा?
करोड़ों नहीं, अरबों से भी ज्यादा का है।
बेपर की मत हाको, तुम्हें कैसे पता?
ऐसे ही कह दिया तुम्हें तरगीब दिलाने के लिए।
जो होना है होने दो, मैं रुकूंगा तुम्हारे साथ। सारी सख्तियां मैंने झेली, मुनाफिकों के दरमियान मौत के मुंह तक मैं गया, बम का टुकड़ा मुझे लगा और उसका फायदा ये नामुराद उठाए। ये कैसे हो सकता है? जब वक्त आएगा तो इसका वो हश्र करूंगा, ये पूरी जिंदगी याद रखेगा।
न ले जाना बेहतर होगा।
अगर दुश्मन की गोलियों से हम गुजर गए तो इन साहब से जान छुड़ाना मुश्किल नहीं होगा।
सच कह रहा है।
जाएंगे, लेकिन मनुचर के बगैर।
मेरे बगैर सिर्फ एक जगह जा सकते हो, जेल में।
फिरोज, कादिर, दौड़ो, इनको गाड़ी तक पहुंचाओ।
अस्सलाम वालेकुम फल्लाह साहब, हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमने सोचा कि आप हमें छोड़कर चले गए।
किन तीनों को?
हम तीनों को, मैं, असद और मनु चहर साहब।
इसका मतलब मैं हूँ, फजले अली हूँ।
क्या आप अपने बेटे को ढूंढने नहीं आए थे?
मैं इसके साथ रहने के लिए आया हूँ, ना कि वापस ले जाने के लिए।
नहीं हो सकता चाचा जान, आपने ट्रेनिंग नहीं की है, आपका नाम भी रजिस्टर्ड नहीं है।
फल्ला साहब, ट्रेनिंग तो इस दफा बहुत से लोगों ने नहीं की है, रजिस्ट्रेशन का भी मरहला होता है हमारी तरह। इनके डॉक्यूमेंट्स भी तेहरान भेज दीजिए, ताकि वहाँ से पल्ला आ जाए।
ये नामुमकिन है मात, इसरार ना करो।
बेटे, मेरे लागर बदन पर मत जाओ तुम। मुझे बंदूक चलानी तो नहीं आती, लेकिन हैवी गाड़ी का तजुर्बा है। लोडर चलाना और मोर्चा बनाना अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाजी साहब, मेरा ये बेटा महाज पर जाने के लिए बहुत जिद कर रहा है, और मैं भी इसे सीधे रास्ते पर चलने से नहीं रोक सकता हूँ जनाब। और अगर मैं इसे छोड़ भी दूँ तो मेरी दुनिया बर्बाद होकर रह जाएगी। अल्लाह साहब, आपका बड़ा करम होगा, मुझे मेरे बेटे से अलग ना करें।
तुम और इमाद जा सकते हो, तुम्हारे वालिद को वापस जाना पड़ेगा।
ठीक है फल्ला साहब, अबू जान हमें माफ कर दें। चलो अहमद, चले।
फजल अली साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हाजी साहब, हाजी साहब, आपके भी तो बच्चे होंगे। आपको अल्लाह का वास्ता, आपके भी तो बच्चे होंगे। ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये अपने बाबा का प्यारा बेटा है। हाजी साहब, आप ही फल्ला से कुछ कहे कि रहम करे मुझ पर। तुम लोगों को रहम क्यों नहीं आता? तुम कैसे मुसलमान हो? ए मेरे खुदा, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा बच्चा है असद। हाजी, हाजी साहब, आपको खुदा का वास्ता, आपको रसूल का वास्ता, आप ही ने कुछ कहे, इन्हें समझाए। मेरा इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है मेरा कोई। कोई नहीं है मेरा।
मुझे पता है
बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दे। हाजी साहब
तुम लोग
कहाँ जा रहे हो? इधर बैठो।
क्या करे
तुम? हम लोगों को इधर जाना है।
चलो चलो
इधर आओ असद, मेरे साथ चलो। लेकिन जाए
मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे जाए, मुझे क्या पता?
मतलब आप किस तरफ से जाए अमान? भाई मेरे,
मुझे
भाई
क्या
मेरे?
पता कैसे जाना है?
अरे भाई रुको, जरा रुको।
कैसे हो भाई?
भाई आपकी बाइक चाहिए।
इसका क्या करोगे?
हम तीनों को सलमताबाद जाना है।
मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ।
जितनी गाड़ियाँ वापस जा रही हैं, इनमें से किसी में सवार होकर चले जाना, नहीं दोगे तो मजबूरन गाड़ी चुरानी पड़ेगी। इन हालात में एक गाड़ी का भी कम होना ठीक नहीं है।
तुम्हारा काम क्या है?
नहीं बता सकता।
तुम मशकूक लग रहे हो।
जानता हूँ भाई, लेकिन भरोसा रखो, यकीन मानो, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, तकदीर के पीछे चल रहा हूँ, जीना भी जरूरी है। ए भाई बाइक दोगे ना?
असद रुकना नहीं, जल्दी चलो, चलो यहाँ से।
हम बड़े नसीब वाले थे जो मारे नहीं गए।
असद,
हाँ
तुम्हें पता है कि तुम बहुत बड़े गधे हो?
बहुत का नहीं पता था।
आखिर तुमने किस लिए सिपाही की बाइक ली? सोचा नहीं कि इस तरह मारे जाएंगे हम?
सोचा,
अगर वो अड़ जाता तो हमारा सारा राज खुल जाता।
मैं यही जानना चाह रहा था।
क्या
यही कि इस घमासान की लड़ाई में खजाने की तलाश में जाना अक्लमंदी है या नहीं? एक तरह से इस्तखारा करना चाह रहा था। मैंने सोचा अगर बाइक दे दी तो जाने में ही मसलहत होगी।
अरे तुम फिर रूहानी बातें करने लग गए।
क्या कहा, फिर रूहानी बातें करने लगा हूँ?
ये रूहानियत हम जैसों को रास नहीं आती, ये बात तुम कब समझोगे?
मनो चहल के बारे में जो कुछ जानते हो यहां लिख दो।
जी।
तुम तो नाम और फैमिली नाम लिख रहे हो, ये तो मैं भी जानता हूं। वो चीजें लिखो जो मैं नहीं जानता।
जैसे कि क्या लिखूं?
जानता हूं मेरे साथी से तुमने क्या कहा।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको और आपके असिस्टेंट को पहले भी कहा है कि मैं इस बारे में।
लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूं। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि मनोज चहर कहां गया है, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। अब तुम खुद जानो।
गुस्ताखी की माफी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन पुरान मैडम ने मुझे इत्मीनान दिला दिया कि उनका वकील रात होने से पहले मेरे पास आएगा और मुझे छुड़ा ले जाएगा। बिल्कुल ही पता नहीं है कि साहब कहाँ हैं। पुरान मैडम ने कहा है कि वो शायद मेरे लिए सौतन लाने गए हैं। मुझे लगता है कि सही कह रही हैं, क्योंकि इस मामले में वो बदनाम हैं। अब तक उन्होंने 3 शादियां की हैं, जिनमें से पुरान मैडम दूसरी हैं।
बस इतना ही?
अब तक जो बातें बताई हैं लिख कर दूं या ऐसे चला जाऊं? इंस्पेक्टर साहब, ये जलाल ज़ादा वकील हैं, मनुचे सलमताबादी और उनकी बीवी की तरफ से उस मामले में इनके वकील हैं।
इनको अंदर कर दो।
किस जुर्म में?
कानून के नुमाइंदे के काम में खलल डालने के जुर्म में।
मुझे छोड़ो भाई, तुम्हें इस काम की इजाज़त नहीं है। मैं एक इज्जतदार शहरी और हाई कोर्ट का वकील हूं।
चलो जल्दी करो।
क्या कर रहे हो ये? तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ो, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा।
जल्दी करो।
6 से 9 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दूंगा।
क्यों?
मनोचहर की हमदस्ती के जुर्म में। उसको फरार होने में मदद दी तुमने।
मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं।
कसम मत खा।
मैं बीवी बच्चों वाला हूँ इंस्पेक्टर साहब। अगर आप मुझे 6 महीने के लिए जेल में डाल देंगे तो पुरान मैडम मुझे निकाल देंगी। मेरे बीवी और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब।
इन बातों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। एतराफ करोगे तो शायद तुम्हें माफ कर दूं।
अगर मुंह नहीं खोलता तो आप मुझे मुसीबत में डाल देंगे, और अगर मुंह खोलता हूं तो मैडम मेरी हालत खराब कर देंगी।
इस कमरे की बातें यहां से बाहर नहीं जाएंगी, यकीन मानो।
तुम लोग अंदर चलो।
जनाब चल तो रहे हैं। ये दोनों जा सकते हैं।
तुमने इन्हें कुछ बताया फरीबुर्ज?
क्या आप गिरफ्तार नहीं हुए थे?
नहीं, इन लोगों ने दिखावे के लिए किया था। ये लोग तुम पर दबाव डालना चाहते थे। तुमने इन्हें क्या बताया?
नहीं नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैं इनको क्या बताता।
इस झूठी प्लानिंग के लिए मैं इन लोगों पर केस दर्ज करूंगा। धोखा देना और धमकाना ये कानून के खिलाफ है, जिसकी सजा बहुत सख्त है।
जनाब, आप बजाय इसके कि अपना टाइम कानूनी दांव पेच लड़ाने में लगाएं, बेहतर है कि लोगों के हकूक की फिक्र करें ताकि आपकी रोजी हलाल हो। अब इससे पहले कि आपके खिलाफ कोई और कानूनी शिक ढूंढ निकालूं मैं, दफा हो जाइए यहां से। चलिए चलिए
चलिए।
आओ चलें फरीबुर्ज, चलो चलें।
फरीबुर्ज ने क्या कहा?
बताया कि महाज जंग पर अपने गुमशुदा भांजे को ढूंढने गया है।
उसने झूठ बोला, तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था।
झूठ मनोचहर ने बोला है, फरीबुर्ज ने नहीं। ऐसा जाहिर किया कि जैसे महाज पर गया है।
तो
ऐसा करो, सीधे कमेटी जाके तहकीकात करो कि मनोचहर ने महाज के लिए किस फौजी मरकज में अपना नाम लिखवाया और किस महाज पर जाना चाहता था।
तुम्हें क्या लगता है, इस तरह का आदमी महाज जंग पर अपने भांजे को ढूंढने जाएगा?
तुम्हारा ख्याल है कि केस के गवाह के बारे में हमें तहकीकात नहीं करानी चाहिए?
हाँ।
तभी बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे एक दूसरे को देखते रहे? शायद वो महाज पर गया हो, किसी को क्या मालूम।
जाबिर, तुम अब बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगे हो।
फिलहाल तो मैं इतना ही कर सकता हूँ भाई। तुम भी एक दफा कमेटी जाकर तहकीकात तो कर लो। अरे जनाब, मैं चाहता हूँ कि अकेले बैठकर मैं खूब सोचूं कि ये आखिर गए कहाँ हैं। हाँ? जाओ सईद, ज्यादा तंग नहीं करो, जाओ भाई।
तुम भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे।
Thank you.
चलो जिंदगी में तुम लोगों का गांव भी देख लिया।
बिल्कुल वही नक्शा है जो बाबा ने अपनी डायरी में लिखा था, सिर्फ पुराना हो गया है। वो देख रहे हो, वो पुरानी पंचक्की होगी कि जिसमें वो लोग अपनी गंदू पिसवाते थे। एक पब्लिक हमाम भी गांव में था, मालूम नहीं बचा है या नहीं। हर घर में एक अस्तबल भी था।
मनुचेहर, दूर मत जाना वरना गुम हो जाओगे। खजाना गांव में किस जगह पर है?
गांव में नहीं है।
तो फिर कहां पर है?
कोहिलान नामी जगह पर।
क्या मतलब?
कोहिलान
यानी कहां?
हमें इसका पता इससे पूछना होगा, लेकिन इस तरह से किसको पता ना चले कि खजाना कोहिलान में यहां है, ये समझ गया तो बराबर हो जाएगा।
ये फजले अली का घर था। इसमें दो तीन दरवाजे वाले और एक पांच दरवाजे वाला कमरा था। यहाँ इस जगह पर एक कुआं था जिसका पानी किले तक जाता था, और इस कुएं का पानी पीछे के पहाड़ से होते हुए निचले गांव की तरफ जाता था, और गर्मी में भी उसका पानी बर्फीला होता था। एक दरवाजा वहां था जो कि पिछले सहन में खुलता था, और उसके पीछे अस्तबल था। उस कोने में एक बावर्ची खाना था। अगर गौर से देखोगे तो उसकी दीवारें अभी भी काली नजर आएंगी। मेरा घर वहां था। अब तो उस घर का खंडहर भी नहीं बचा।
मनुचेहर, तुम तो यादों में खो गए।
यहां से लेकर वहां तक ये सारी जमीनें मेरी थी। अब भी इसका कुछ हिस्सा मेरे नाम है। अब भी मैं तैयार हूं कि इन सब जमीनों के कागजात दूसरों के नाम कर देता, उसके बदले मेरा घर फजले अली के घर जैसा बचा रह जाता। मैं माल और दौलत में हमेशा तुम्हारे बाबा से आगे रहा। मेरे बाबा भी तुम्हारे दादा से बढ़कर थे। अगर तुम्हारे घर में एक घोड़ा होता तो हमारे घर में दो दो होते। हमारा घर भी तुम्हारे घर से बहुत बड़ा था। हमारा दस्तरखान हर तरह की चीजों से सजा रहता था, लेकिन एक चीज की कमी थी। तुम्हारे बाप दादा के पास मेरे बाबा से एक चीज ज्यादा थी जिसका मुझे कभी पता नहीं चला कि वो क्या थी। बिल्कुल इस घर की तरह, जिसमें पता नहीं कि क्या चीज है कि आज तक ये सालिम खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे घर का नामो निशान तक नहीं है। चलें।
कहाँ चलें?
खजाना ढूंढने के लिए।
जाने की जरूरत नहीं, खजाना इन्हीं में से एक घर में दफन है। एक एक घर तलाश करके आगे बढ़ना होगा।
जमीनों की बात मैं कर रहा था, क्या तुम्हें पता है मुझसे पहले वो किसकी थी?
नहीं।
लोगों की थी। जानते हो मेरी कैसे हुई?
नहीं।
100 हीलों बहानों से। सोहबत खान ने एक हफ्ते की मोहलत दी। उसने कहा कि हफ्ते के आखिर में आऊंगा। अगर अली मर्दान ने खजाना दिया तो ठीक, वरना मर्दों को मार दूंगा और औरतों को उठाकर ले जाऊंगा। रात में तय पाया कि मर्द रुकेंगे और लड़ेंगे और औरतें और बच्चे नीचे वाले गांव में चले जाएंगे। जब मैं साखी इराक में था तब मैंने फजले अली को देखा। मैं औरतों बच्चों के साथ था और वो मर्दों के साथ था। वो घोड़े पर था। मुझे उससे घिन आने लगी। मैंने कहा कि अगर मर्द हो तो ठहरो। उसने कहा मैं मर्द हूँ लेकिन मुझे जाना होगा। उसने कहा कि सोहबत खान उस खजाने के पीछे आ रहा है जिसका राज सीना बसीना चला आ रहा है, और कहा कि सोहबत खान के वहाँ पहुँचने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा राज इस शर्त पर छुपाए रखूंगा कि मेरा हिस्सा दूसरों से ज्यादा होगा। उसने भी मान लिया और चला गया। हम जिस रास्ते पर खड़े थे वो सीधे उसी रास्ते पर गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? फजले अली ने खजाना किसी घर में नहीं ढूंढा बल्कि वो सीधा गया। इसलिए खजाना यहां नहीं कहीं और होना चाहिए असद बेटा। इसलिए तुम्हारे बाबा के बखौल मेरा हिस्सा दूसरों से ज्यादा होना चाहिए।
खजाना किले के पीछे किसी गांव में दफन है। क्यों हंस रहे हो?
मैं तुम्हारी सादगी पर हंस रहा हूं। खजाना कहीं और है। पहला पता जो भी होता है गलत होता है।
गलत नहीं है।
गलत नहीं है तो गांव का नाम बता दो।
वो यही ना, कवामाबाद।
तुम्हारा मतलब हसनाबाद है?
हाँ ना भाई, हसनाबाद।
तो फिर तो खिला ना हसनाबाद में है ना कवामाबाद में। गांव का नाम सीरवान, बंजीर, चखाजर्द, खारसून और गिरगीर है। इनके नाम तुम्हारे कानों में पहली बार पड़ रहे हैं। अब सच बता दो असद।
कोहे एलान जाना होगा।
क्यों बताया?
कहां से जाना होगा?
कोहे जलान में किस जगह?
कोहे एलान में किस जगह?
नहीं बताऊंगा।
बताना पड़ेगा असद, कोई चारा नहीं है।
अगर पता बता दिया तो मुझे छोड़कर चले जाओगे। चलो चलते हैं, रास्ते में बताऊंगा कि कहां से जाना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा।
डरो मत असद, मौका आने पर इसका सर कुचल देंगे।
अहमद सही कह रहा है, अभी वक्त नहीं आया है। आओ चलें, रास्ता बहुत दूर है, रात हो जाएगी।
شبیه تو نیست، کنار تو در